मलाकी तीसरा बाब। देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा और खुदावंद जिसके तुम तालिब हो नागहान अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। हां अहद का रसूल जिसके तुम आरजूमंद हो आएगा, रब्बुल अफ़ाज फरमाता है, पर उसके आने के दिन की किसमें ताब है और जब उसका जहूर होगा तो कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वो सुनार की आग और धोबी के साबुन की मानिंद है और वो चांदी को ताने और पाक साफ करने वाले की मानिंद बैठेगा और बनी लावी को सोने और चांदी की मानिंद पाक साफ करेगा ताकि वो रास्तबाजी से खुदावन के हजूर हदिये गुजराने। तब यहूदा और यरूशलेम का हदिया खुदावंद को पसंद आएगा जैसा अय्यामे कदीम और गुज़श्ता जमाना में, और मैं अदालत के लिए तुम्हारे नजदीक आऊंगा और जादूगरों और बदकारों और झूठी कसम खाने वालों के खिलाफ और उनके खिलाफ भी जो मजदूरों को मजदूरी नहीं देते और बेवाओं और यतीमों पर सितम करते और मुसाफिरों की हक तलफी करते हैं और मुझसे नहीं डरते, मुस्तैद गवाह हूंगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूं, इसीलिए ए बनी याकूब तुम नेस्त नहीं हुए। तुम अपने बाप दादा के अय्याम से मेरे आइन से मुनहरिफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होऊंगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रजू हों। क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा, दैयकी और हदिया में। पस तुम सख्त मालून हुए क्योंकि तुमने, बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दैयकी जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह न रहे। और मैं तुम्हारी खातर टिड्डी को डांटूंगा और वो तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी और तुम्हारे ताकिस्तानों का फल कच्चा ना झड़ जाएगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी क्योंकि तुम दिलकुशा मुमलकत होगे, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। खुदावंद फरमाता है, तुम्हारी बातें मेरे खिलाफ बहुत सख्त हैं तो भी तुम कहते हो हमने तेरी मुखालिफत में क्या कहा, तुमने तो कहा खुदा की इबादत करना अबस है, रब्बुल अफ़वाज के अहकाम पर अमल करना और उसके हजूर मातम करना ला हासिल है, और अब हम मगरूरों को नेक बख्त कहते हैं। शरीर बरोमंद होते हैं और खुदा को आजमाने पर भी रिहाई पाते हैं। तब खुदा तरसों ने आपस में गुफ्तगू की और खुदावन ने मतवज्जह होकर सुना, और उनके लिए जो खुदावन से डरते और उसके नाम को याद करते थे उसके हजूर यादगार का दफ्तर लिखा गया। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, उस रोज वो मेरे लोग बल्कि मेरी खास मिल्कियत होंगे और मैं उन पर ऐसा रहीम होऊंगा जैसा बाप अपने खिदमत गुजार बेटे पर होता है। तब तुम रजू लाओगे और सादिक और शरीर में और खुदा की इबादत करने वाले और ना करने वाले में इम्तियाज करोगे। मलाकी चैप्टर 4। मलाकी चौथा बाब। क्योंकि देखो वो दिन आता है जो भट्टी की मानिंद सोजान होगा, तब सब मगरूर और बदकिरदार भूसे की मानिंद होंगे, और वो दिन उनको ऐसा जलाएगा कि शाखो बुन कुछ ना छोड़ेगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताजीम करते हो, आफताबे सदाकत ताले होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी, और तुम गाओ खाना के बछड़ों की तरह कूदो फांदोगे। और तुम शरीरों को पामाल करोगे, क्योंकि उस रोज वो तुम्हारे पांव तले की राख होंगे, रब्बुल अफवाज फरमाता है। तुम मेरे बंदा मूसा की शरीयत यानी उन फराइज़ो अहकाम को जो मैंने हौरेब पर तमाम बनी इसराइल के लिए फरमाए याद रखो। देखो खुदावंद के बुजुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा, और वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का बाप की तरफ मायल करेगा। मुबादा मैं आऊं और जमीन को मालूम करूंगा।